ओम शांति। ठीक है सब, फाइन। कल का कुछ मलाल तो नहीं है दिल में कहीं? कल यहां से जाने के बाद आई होप मेनी ऑफ यू आर रूममेट्स, इकट्ठे रह रहे हैं, नहीं तो इकट्ठी बिल्डिंग में तो रह ही रहे हैं। कितनों ने आपस में रिलीजियस एक्सपीरियंसेस शेयर किए? ओके, इट्स गुड, एटलीस्ट देर आर फोर और फाइव, इफ नॉट द होल क्लास, इफ नॉट मैनी। श्योर बुक्स नहीं है, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस आपके किस किताब में लिखे हैं? मेरा तो ये था कि यहां हम सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद जैसे क्लास में रिएक्शंस होते हैं तो नेचुरली बाद में भी आपस में भी कई बातें हमें पता नहीं होती, बुद्धिज्म है या जैनिज्म है या हिंदुइज्म है, और उसको हम अपने धर्म के साथ अपने सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं, फिर आपस में डिस्कस करते हैं, और नहीं तो ये तो कहती है ना कि ये गलत था, कैसे है, देखो तो हिंदू धर्म क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये है वो है, मुस्लिम्स में क्या है, क्रिश्चियंस में क्या है, ऐसी बातें होती है, नॉर्मल नेचुरल है ना। पता नहीं क्यों आपको नेचुरल नहीं लगता, मुझे तो लगता है। आई डोंट थिंक, लेकिन अब मैं करूं भी क्या। मेरे पास आपको तो लगता है कि मेरा पढ़ाना नेचुरल है, अब मुझे लगता है कि मेरा ये एक ऐसी आदत बन गई है, इससे छुटकारा नहीं है। क्योंकि आई बिकेम ए टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय कंपल्शन। सबसे बड़ी बात जिसका मुझे हमेशा गर्व रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट माई फैमिली, माई पेरेंट्स wanted that I should join some other services. For their satisfaction, I cleared civil services examination. Parents ko dikha diya ki ye certificate hai, tasalli ho gayi, aapka beta civil services mein aa sakta hai, lekin aana nahi chahta hai, bas itna dhyan rakhe. I was a lecturer at that time. To maine kaha ki mujhe teacher rehna hai, टीचिंग ही मुझे सबसे अच्छा प्रोफेशन लगता है, तो व्हाट कुड दे डू, वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लिया। बेशक कभी बातचीत होती तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे एडजेक्टिव सुने हैं अपने पिताजी से कि तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं है, तुम अपने को प्रोफेसर कहते हो, तुम्हें आता क्या है। तो लेकिन ये अधिकार पेरेंट्स का होता है, नहीं नहीं, आई मीन ऐसी बात केवल पेरेंट्स ही कह सकते हैं अपने बच्चों से, बाहर का कोई नहीं कह सकता, किसी की हिम्मत भी नहीं होती है। तो ये भी प्यार है ना, अपना फैमिली वैल्यू है ना ये भी। तो इसीलिए मुझे ये रहा, और ऑनेस्टली मैंने टीचिंग में कभी भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को मिक्स नहीं होने दिया। आई डोंट नो कैसे हो गया, बस हो गया, जिसके लिए शायद मेरे बच्चों को मेरे से शिकायत रही होगी कि हमारे फादर ने हमें वो लग्जरीज नहीं दी जो दूसरे बच्चों को मिलती हैं उनकी एज ग्रुप के, नहीं दी तो नहीं दी। लेकिन आई हैव लिव्ड ए कॉन्टेंटेड लाइफ, मुझे कभी इस बात का मलाल नहीं है कि मैं ये क्यों बना, काश मैं ये करता, काश ये हो जाता, मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी। या यूं कह लीजिए कि मेरे एम्बिशंस नहीं थे, लेकिन वंस आई वॉज ए टीचर, मुझे लगा कि जो पाना था मिल गया, अब तो इसी में ही आगे बढ़ो। और मेरी एक अप्रोच, लाइफ की अप्रोच भी रही है कि व्हेन आई एम इन ए क्लासरूम एंड व्हेन आई एम प्लेइंग द टीचर, आई एम द टीचर। मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति कितना बड़ा कितना छोटा क्यों ना हो, वो मेरे लिए बच्चे जैसा है। बुरा नहीं माने सर आप शायद तो, क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस पढ़ाई हैं, एमए वगैरह, तो उसमें कई बार लोग मैरिज के बाद भी क्लास ज्वाइन करते हैं, बड़ी उम्र के भी आते हैं, तो उसमें भी मेरा एटीट्यूड हमेशा वही रहा। और फिर मैंने बच्चों के साथ एक अपनापन डेवलप किया, यानी ये नहीं कि मैं आया लेसन पढ़ाया और गया उसके बाद मुझे क्या, वो नहीं। मुझे कई बार ये भी रहा कि अगर क्लास के अंदर मैंने किसी बच्चे को देखा जो नॉर्मल में अच्छा होता है, अच्छे से बात करता है, हंस के बात करता है या करती है, और उस पर्टिकुलर डे पे वो नहीं कर रहा है ऐसा, तो मैंने क्लास में उसके पास जाकर भी उससे पूछा, बच्चे क्या हुआ, क्या बात है, यू आर नॉट योर नॉर्मल सेल्फ, चाहे कुछ भी हो, आई प्रोब्ड। तो वो एक अपनापन जो होना चाहिए इंसानों में और टीचर टॉट में तो जरूर होना चाहिए, वो मैंने कोशिश की। आई डोंट नो कितना एक सक्सेसफुल हुआ। तो ये सारा टाइम मेरा इसी में ही गुजरता रहा, और रिटायर हुआ तो उससे पहले बाबा ने पकड़ लिया, और उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाओ, तो पढ़ाना शुरू कर दिया। कहीं जेल में जाकर पढ़ाया, कहीं क्लासेस में पढ़ाया, कहीं सेक्टर्स में पढ़ाया, तो बहुत खुशी होती है, तरह तरह के अनुभव मिलते हैं। हिसार सेंट्रल जेल में पिछले 4-5 साल से जब भी हिसार में होता हूं वहां डेली जाता हूं क्लास के लिए, और उनके साथ मुझे कभी नहीं लगा कि आई एम अमंगस्ट द क्रिमिनल्स। हालांकि वो बहुत बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल है, 1500 के करीब कैदी हैं वहां पर, मुझे कभी उनसे डर भी नहीं लगा, कभी उनसे नफरत भी नहीं हुई, बड़ा अपनापन सा लगता है। तो मैंने एक बार जैसे उनसे कहा कि यहां आपके आता हूं ना क्लास में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी क्लास होती है, उन्होंने अच्छा मेंटेन भी किया हुआ है। तो मैंने उनसे एक से कहा, मैंने कहा कई बार दिल करता है मैं भी यहीं रह जाऊं आपके साथ। तो उनमें से एक ने कहा, कहने लगे सर क्या दिक्कत है, रह जाओ ना, हमने कहां रोका है आपको। सो लेकिन वहां रहने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। पुरुषार्थ तो वहां भी करना पड़ेगा ना, वो भी। सो और इसी तरह हिसार में बोस्टल जेल है, वहां बहनों की क्लास है, वहां बहनें भी अनफॉर्चुनेटली आ जाती हैं किसी तरह से इन चक्रों में, क्राइम में किसी तरह से, तो उनकी क्लासेस भी ली। तो कभी कभी अलग से मौका मिले तो बात करें, तो यानी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं वहां भी। यानी मुझे 2-3 ऐसे कॉन्विक्ट्स मिले जिनके साथ शायद मैं उनके साथ जो शेयरिंग है उसको जिंदगी में मरते तक भूल नहीं पाऊंगा। ए लेडी कॉन्विक्ट जिसकी उम्र लगभग 30 साल से भी कम थी, एंड शी वॉज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी उसको सजा मिली हुई थी मौत की, और वो वहां थी। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने मुझे कहा कि वो अलग सेल में है, कभी आप उससे बात करें। तो आप सोचें कैसा लगेगा। एक और तमिलनाडु की कॉन्विक्ट थी, शी वॉज ए डॉक्टरेट PhD एंड शी वॉज ऑल्सो फेसिंग द चार्ज ऑफ मर्डर। तो लेकिन उसको हिंदी कम आती थी, प्रॉब्लम होती थी, तो इंग्लिश में कन्वर्स हो जाता था बात। तो मुझे वो एक बार उस लेडी ने कहा, कहने लगी सर मुझे एक हिसार में कोई साइकेट्रिस्ट है, मुझे उसकी जरूरत है। मैं कहा व्हाई डू यू वांट ए साइकेट्रिस्ट। कहती मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में रहती हूं, मैं वो नहीं हूं जो होना चाहिए। अब बताएं ऐसे कन्विक्ट के साथ आप क्या करेंगे। तो मैंने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है आपको। कहती सर आप बाहर से आते हैं, आप लोग इतने अच्छे, हम अंदर कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा बहन जी आप तो बहुत अच्छे हैं हमारे से, बाहर आके देखो तो पता लगे, सुरक्षित हो यहां पे। मैं अब यहां आया हूं, यानी आपकी क्लास जेल नहीं है ऑफकोर्स, तो मैंने कहा मैं यहां इस वक्त जेल में हूं, मुझे ये पता है कि मेरा घर सुरक्षित है, पीछे से कोई लूट नहीं लेगा, चोरी नहीं कर लेगा, आग नहीं लग जाएगी, है? और मैं सड़क पे जाता हूं, यहां से मेरा घर 5-6 किलोमीटर है, तो रास्ते में एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, सड़क पे कोई मार नहीं जाएगा, आपको है ऐसा डर? आप तो बड़े निश्चिंत बैठे हो ना, बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? आप आराम से सुबह उठो, पका पकाया यहां बाबा का जैसे मिलता है, वहां भी आपको आराम से खाना तैयार मिलता है, ना आपको कहीं पानी भरना, ना कोई बिल भरना, ना टेलीफोन का बिल, ना बिजली पानी का बिल। मैं यहां आता हूं तो कई बार मिसेज फोन करती है, फला फोन बिल आए हुए हैं, अब वो बिल भरने मुझे जाना होता है, अब मैं यहां हूं, भर देना, पेनल्टी आएगी, देख लेना, कर लेना। सो आई मीन हर जगह का अपना अनुभव, और ये सारे अनुभव मिले कैसे? बिकॉज आई वॉज ए टीचर ना, टीचर। सो दिस इज सच एन एनरिचिंग प्रोफेशन। एक बार मेरे कुलीग ने मेरे से पूछा, कुलीग क्या कहूं, पुराने मेरे कॉलेज के कुलीग थे, और हमने एक ही साल में सिविल सर्विसेज क्लियर किया, उन्होंने प्रेफर किया, वो चले गए, ज्वाइन कर लिया, मैं नहीं गया। तो कुछ समय बाद मैं एक कॉलेज में था, तो वहां वो आए एज चीफ गेस्ट, हमारे प्रिंसिपल ने बुलाया था उनको, तो मैं स्टेज पर कंडक्ट कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था फंक्शन को, उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो प्रिंसिपल से बोला कि ये मिस्टर गुलियानी है क्या? बोला यस, यानी लगभग 20-22 साल के बाद हम मिले थे। तो प्रिंसिपल ने कहा यस, तो उन्होंने कहा कि मुझे इनको अनाउंसमेंट के बाद जब आइटम शुरू हो जाए तो इनको कहना मुझे मिलेंगे। मैं नीचे आया, बैठा उनके पास, तो कहने लगे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने बड़े गौर से देखा, अरे, तो मैंने कहा एचएस राणा, मगर तुम तो बड़े फैट हो गए, तुम थे तो नहीं ऐसे? तो कहता है तू वही का वही टीचर रहा, तू बदला ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमें देख हम क्या बन गए। तो मैंने एक छोटा सा सवाल किया, राणा साहब अच्छी बात है, यहां कॉलेज में आपसे क्या बात करूं, कभी घर मिलेंगे तो बात होगी, अच्छा है आपने अपने बच्चों को बहुत फैसिलिटीज दी, आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, सर्वेंट्स हैं, व्हीकल्स हैं, सब कुछ है, हमारे पास नहीं है, आपका इन्फ्लुएंस भी है। मगर एक छोटी सी बात का जवाब देना, कभी रात को चैन से सोए हो? कभी नींद आती है? वो कहता क्यों? मैं कहा नहीं, मैं आई एम सीरियस। मैंने कहा राणा साहब मुझे अब कहो, मैं यहां कमरे में बेड लगा दो, मैं लेटता हूं, 10 मिनट बाद देखना मैं गहरी नींद में होऊंगा, मैं तो दिन में सो सकता हूं, आप रात को भी नहीं सो सकते। और दूसरी बात, जिस दिन आप रिटायर हो जाना ना, उस दिन मुझे बताना आपकी स्थिति क्या है। आप ये आईएएस या ये जो रिटायर होते हैं ना, बड़ी ईगो होती है इनमें, और ये तरस जाते हैं कि कोई इनको सलाम करे ना। जब ये आईएएस में और पोस्ट में होते हैं, लोग इनको सलाम करते हैं, तो इनकी ईगो, उसी से तो जीते हैं ये, इनकी जिंदगी उसी में है। और जिस दिन ये कुर्सी से नीचे आते हैं, उस दिन देखते हैं। और मैंने कहा हम तो सारी उम्र उन लोगों में रहते हैं जिनके साथ हमारा अपनापन है। मैं कहा आज आपको अपना पुराना टीचर मिल जाए तो आज आप उसको विश करने जाओगे, लेकिन आज आपको अपना पुराना कुलीग मिल जाए, आप उससे मिलने को जाओगे? नहीं जाओगे। तो टीचिंग तो इसे रियली ए नोबल प्रोफेशन, आप माने चाहे ना माने, मुझे तो लगता है, और मुझे फख्र है इस बात का कि मैं टीचर हूं। आई थिंक चलें, घड़ी कुछ कह रही। नहीं, आज मैं ये नहीं कहूंगा आपकी वजह से है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर सका, आपने एक हल्की सी चिंगारी लगाई और इधर आग लग गई। ओके, थैंक यू। यस, चलिए आज विल टेक अप क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड सिखिज्म, तीन धर्म आज के। क्रिश्चियनिटी को अगर आप स्टडी करें और कंपैरेटिवली हिंदुइज्म के साथ देखना चाहें, तो अपेरेंटली बाहरी स्तर में आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लगेंगे, जहां हिंदुइज्म ये आपकी बुक में नहीं है इसीलिए आप सुने, जहां हिंदुइज्म ऑलमोस्ट सेल्फ इफेसिंग है, एसर्ट नहीं करना, वहां क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट है, कल्चरली इन्फ्लुएंशियल है, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पावरफुल है, उसके ग्रो होने का कारण जो है। हिंदुइज्म जब ग्रो किया, हिंदुइज्म का जब विकास हुआ, कहीं इसको एसर्ट इस तरह से नहीं किया गया पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या कल्चरली। क्यों? क्योंकि एक वो समय था जिस समय हिंदुइज्म डेवलप हुआ, एक वो समय था जब दूसरे धर्म ऐसे ज्यादा थे ही नहीं जहां कंपेयर करने की जरूरत पड़ती, जहां अपने आप को असर्ट करने की जरूरत पड़ती। लेकिन जिस समय क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ, उस समय समाज के अंदर दूसरे धर्म भी आ रहे थे, डिफरेंट ओपिनियंस भी आ रहे थे। बुद्धिज्म भी देखिए क्रिश्चियनिटी से पहले का है। तो उस समय क्रिश्चियनिटी को अपने आप को एस्टेब्लिश करना था, एसर्ट करना था, परिणाम स्वरूप वो नेचर बनी। क्रिश्चियन मिशनरीज के अंदर आप देखें, किसी भी और धर्म में, मुस्लिम्स को इस्लाम को थोड़ा छोड़ दें, तो किसी भी और धर्म में इतना ज्यादा सिस्टेमैटिक एफर्ट नहीं किया गया, फोर्सफुल एफर्ट नहीं किया गया अपने धर्म के प्रचार का या दूसरों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने का जितना क्रिश्चियनिटी में किया गया है। ये क्रिश्चियनिटी का डोमिनेंट फैक्टर रहा है, और क्रिश्चियनिटी मेनली पॉलिटिकल फोर्स बनकर आगे आई है। क्रिश्चियनिटी एक जो जिन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री या ऐसा वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ी है वो जरूर जानते होंगे, और आज भी जो है, आज भी किंग और क्वीन की, इंग्लैंड के किंग और क्वीन की स्थिति क्या होगी उसका फैसला क्रिश्चियनिटी बिशप्स करते हैं आज भी। बेशक उसको अब उतना ज्यादा जो है एफर्ट ना, उसको प्रैक्टिस में ना लाया जाता हो, लेकिन फॉर्मली आज भी वही है। सो क्रिश्चियनिटी को पढ़ते वक्त आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये कल्चरली बहुत इन्फ्लुएंशियल, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ए वेरी पोटेंट फोर्स, पावरफुल फोर्स रही है, जिसके कारण ये संसार के विभिन्न देशों में इसका प्रसार हो सका। क्रिश्चियनिटी में जैसे हिंदुइज्म में भी है, इस्लाम में भी है, सुन्नी शिया हैं, हिंदुओं में सनातनी आर्य समाजी हैं, उसी तरह से क्रिश्चियंस में भी डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, और ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव्स जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन जो रोमन कैथोलिसिज्म है इंडिया के अंदर, मेनली वही ज्यादा जो है प्रसारित हुआ है। उसका भी कारण है कि रोमन कैथोलिक्स मुस्लिम्स की तरह, इस्लाम की तरह इस बात में विश्वास करते हैं कि आप जितने ज्यादा लोगों को अपने धर्म में लाते हैं उतने ही आप ऊंच हैं, उतने ही आप अच्छे हैं। सो परिणाम स्वरूप, क्योंकि भारत के अंदर बहुत डाइवर्सिफिकेशन है सोशली, अगर यहां बहुत इन्फ्लुएंशियल, रिच और पावरफुल लोग हैं तो बहुत मिजरेबल लोग भी हैं, जिसको हम लो कास्ट का नाम भी दे देते हैं, पीपल ऑफ लोअर कास्ट कह देते हैं। लेकिन आप यूं देखें कि जो बहुत पुअर हैं, जिनका जीवन स्तर बहुत मिजरेबल लेवल पर है, तो उनको इन्होंने बहुत ज्यादा लालच देकर प्रेरणा देकर अपने कन्वर्ट किया। गांव के गांव, पूरे के पूरे ग्रुप्स दे वर कन्वर्टेड। और फिर दूसरी बात यह हुई कि जिस समय यहां पर ब्रिटिश रूल था उस समय पॉलिटिकल फोर्स भी इनकी थी, इसीलिए इंडिया में अगर काफी कन्वर्जन्स हुई हैं और बाद में प्रोटेस्ट भी अब लेटेस्ट हमारी सेंचुरी में हुए हैं तो वो इसी कारण से हुए हैं। सो इन लोगों ने कैथोलिक्स जो मेनली इंडिया के अंदर आए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रसार करने का प्रयास किया, अपने धर्म को फैलाने का प्रयास किया। दूसरे शब्दों में अगर आप इस बात को यूं कहेंगे आप नेगेटिव है, मैं अगेंस्ट में नहीं हूं किसी के भी, बट स्टिल अगर आप ये कहें कि इन लोगों ने या पर्टिकुलरली वो मिशनरीज जो थे उन लोगों ने अपने जीवन को अपने व्यक्तिगत सेल्फ को सुधारने की बजाय, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने की बजाय, अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की बजाय दूसरे लोगों को कन्वर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट लिया। दैट इज द रीजन कि ये मिशनरीज जो आए, ग्रुप्स के ग्रुप्स आए इंडिया के अंदर और इंडियन सोसाइटी के अंदर ये फैले और इन्होंने हर तरह से कन्वर्ट किया। अगर आपको, मुझे अब पता नहीं है क्योंकि आई एम आउट ऑफ टच, लेकिन अगर आपको 25-30 साल पहले का किसी को अनुभव हो तो ये मिशनरीज आपको फ्री लिटरेचर देते थे, फ्री कोर्सेज कराते थे, आपके घरों तक आते थे और आपको जो है बाहर विदेशों में भेजने का लालच भी देते थे। सो ये सारा कुछ हुआ है शायद, अब मुझे, मैंने कहा ना मैं आई एम आउट ऑफ टच। तो ये तो आउटर इंट्रोडक्शन है क्रिश्चियनिटी की। वैसे क्रिश्चियनिटी क्या है? ये क्राइस्ट सेंटर्ड है, क्राइस्ट सेंटर्ड रिलीजन है। और क्योंकि क्राइस्ट को ही बेशक ये सन ऑफ गॉड कहते हैं, लेकिन दे डोंट ट्रीट हिम लेस देन गॉड। आप नोट करें इस बात को, दे से दैट क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, मीनिंग देयर बाय दैट क्राइस्ट इज नॉट गॉड। ईसा मसीह परमात्मा नहीं है, ईसा मसीह परमात्मा का बेटा है, दिस इज व्हाट दे से। लेकिन प्रैक्टिस के अंदर हमेशा क्राइस्ट को ही गॉड का दर्जा दिया जाता है प्रैक्टिस में। यही कारण है कि जितने भी आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे क्रूसिफिक्स जो है उनके गले में मिलेगा, क्रॉस, क्रूसिफिक्स, आई मीन ईसा मसीह को लटकाया हुआ जो है वो चित्र जो है या मेडल, वट एवर यू कॉल इट, सो वो क्रूसिफिक्स जो है दे वियर। और फिर हालांकि उन्होंने कहा कि क्राइस्ट सन ऑफ गॉड नहीं है, ये बात आपकी बुक में नहीं है, लेकिन स्टिल यू कीप इट इन माइंड। और अगर आप इम्तहान में लिखते हैं तो बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा रादर कि यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज। They treat Christ as a savior. Christ, ईसा मसीह, हमारा परोपकार करने वाला है, हमें बचाने वाला है, हमें पापों से बचाने वाला है, ईसा मसीह करता है, क्योंकि उसके अंदर miraculous powers है, चमत्कारिक शक्तियां हैं उसके अंदर। और अगर ईसा मसीह करता है ये सारा कुछ तो भगवान क्या करता है? If the Son of God does all these things, what does the God do? फिर परमात्मा क्या है? यानी वो ये कहते हैं, उन्होंने भी परमात्मा को निराकार ही माना है, जैसे हम ब्रह्मा कुमारी में मानते हैं, और परमात्मा को उन्होंने फायर के रूप में, लाइट के रूप में, फ्लेम के रूप में देखा है परमात्मा को, या वो परमात्मा को एक स्टार के रूप में देखते हैं। आप देखेंगे जहां कहीं भी आपको क्रिश्चियंस का पोस्टर मिले या ईसा मसीह का मिलेगा, इनवेरिएबली साइड पे ऊपर स्टार जरूर मिलेगा आपको, चाहे हमारा ध्यान उसकी तरफ ना भी जाए। तो वो ये मानते हैं परमात्मा इस तरह से है, और वो ये कहते हैं कि परमात्मा ट्रांसेंडेंट है और क्रिएटर है, जिसने इंसान को ही क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने इंसान को अपने ही रूप में बनाया, क्रिएटेड मैन। मैंने नाराज ना हो क्रिश्चियन से, और मुझसे तो नाराज बिल्कुल ही ना होना, जब ये क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि गॉड क्रिएटेड मैन, और कहानी भी है, अगर आपके पास किसी और के पास भी मोबाइल है तो आप उसको साइलेंट मोड पे कर देना। मुझे एकदम लगा कि कहीं वो ट्रैफिक कंट्रोल तो नहीं हो गया, मैं चुप हो गया एकदम से, है ना? थोड़ा कर ले, बंद कर ले, कोई बात नहीं, साइलेंट मोड पे कर लें। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, और जब आदमी को बनाया गया और उसको कहा जाता है, कहानी है, ईडन गार्डन में रखा गया, तो थोड़े टाइम बाद आदमी अकेला बोर हो गया, परमात्मा के पास गया, क्या करूं, आपने बना दिया मुझे, व्हाट शुड आई डू, आई हैव नो कंपेनियन, आई हैव नथिंग टू डू। परमात्मा ने क्या किया कि उसकी एक रिब ली, यानी पसली कहते हैं हम, रिब ली और औरत बना दी। सो सिंस अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल, सिंस वुमन वॉज क्रिएटेड फ्रॉम ए रिब ऑफ मैन, देयरफॉर शी इज ट्रीटेड इन्फीरियर टू मैन। यानी क्रिश्चियनिटी में भी, वैसे तो हिंदुइज्म में तो है ही सही, यानी स्त्री को पुरुष से नीचा दर्जा दिया जाता है, उसको कम समझा जाता है, बाकी ऐसी बात है नहीं कोई भी। सो जो क्राइस्ट का, अब जब सन ऑफ गॉड है, क्राइस्ट का इस दुनिया में आना, उसको वो ये कहते हैं क्राइस्ट को भगवान ने भेजा किस लिए, ताकि वो दुनिया के अंदर जो अस्त व्यवस्था है उसको स्थापित करे, टू एस्टैब्लिश, टू रादर री एस्टैब्लिश ग्रेस, पीस, सिविलाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे गुणों की स्थापना के लिए, बुराइयों का नाश करने के लिए क्राइस्ट को भेजा गया, परमात्मा ने भेजा। और उनके लिए इसीलिए कहा जाता है कि क्राइस्ट को ये समझा जाए, आपने अक्सर देखा भी होगा कि ही इज द शेफर्ड, शेफर्ड क्या कहते, चरवाहा, 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 यानी भेड़ों को चराने वाला जो है, यानी उसको जो है हमेशा, यानी क्रिश्चियंस का बिलीफ ये है कि वो उसको ये कहें कि लॉर्ड इज माय शेफर्ड, यानी हम सब भेड़े हैं, बनेंगे हम सब भेड़े हैं, और ये तो एक उपमा है ना, ये तो मेटाफर है, कोई घबराने की बात नहीं है, यू आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज एनिमल, वो बात नहीं है, यानी जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है ना, वो मकसद है, उनकी अच्छी देखभाल करता है, उनको ले जाता है, चराता है, इकट्ठा रखता है, खतरों से बचाता है, तो उस सेंस में लिया गया, उस सेंस में तो भेड़ बनने में इतराज नहीं ना किसी को भी। सो परमात्मा जो है, लॉर्ड इज माय शेफर्ड, और साथ में ये भी, क्योंकि अगर हम भेड़े हैं तो ही लीड्स मी, वो मुझे आगे ले जाता है, मेरा नेतृत्व करता है, मेरा रक्षक है, परमा, जैसे हम हिंदू लोग कहते हैं अक्सर जो है। लेकिन एक बड़ी बात जो कही जाती है परमात्मा के लिए क्रिश्चियनिटी में, वो ये कि द लॉर्ड रेस्टोर्स माई सोल। मैं इस बात को कई बार, मैंने आप देखे, मैंने कोशिश की ओल्ड टेस्टामेंट भी देखने की, पढ़ने की, बाइबल को भी थोड़ा, लेकिन आई डोंट नो, मैंने कुरान भी मतलब लेके रखा एक बार, उसकी आयतें पढ़ने का प्रयास किया ट्रांसलेटेड फॉर्म में, हालांकि थोड़ी बहुत उर्दू आती है मेरे को स्टिल, लेकिन नहीं, कुछ समझ नहीं आया, शायद हम उतने कैपेबल नहीं है। तो यानी वो उन्होंने ये कहा कि द गॉड, द लॉर्ड रेस्टोर्स माय सोल, व्हाट डज इट मीन, या तो ये कहें कि परमात्मा मेरी आत्मा के अंदर मेरे गुणों का विकास करता है, परमात्मा मेरी आत्मा को बनाता है, जन्म देता है, उसका विकास करता है, कुछ उस तरह से समझ नहीं आया। लेकिन ये मानते हैं कि माय सोल, क्रिश्चियंस मानते हैं, माय सोल इज नथिंग इफ इट इज नॉट कनेक्टेड विद लॉर्ड। परमात्मा के साथ अगर जुड़ी हुई नहीं है तो मेरी आत्मा है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है। तो वहां फिर सोल की कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाती है कि फिर इंसान की लाइफ कहां है, कैन वन बी लिविंग विदाउट सोल, और इज इट ओनली मेटाफोरिकली टॉकिंग के यस गॉड रेस्टोर्स माई सोल। इसी तरह से ये भी कहा गया, आई फियर नो ईवल वेन आई एम इन दैट हर्ड, जब मैं उस झुंड में हूं, परमात्मा जिसको लीड कर रहा है, भेड़ों के झुंड में हूं, तो मुझे किसी का डर नहीं है। वो तो हर एक को होता है, परमात्मा आपके साथ है तो फिर आपको डर होगा भी क्यों। तो ये उनकी मुख्य बात है जो कहते हैं, और अब उनको सिखाया जाता है कि आप इन बातों को अपने मन में रख, जैसे हमें कहा जाता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन हम कितने और कितनी जल्दी इस बात को सीख पाते हैं वो बाद की बात है। यानी रटा हुआ तो हम सब ने है, अच्छे से रटा हुआ है, रात को उठा के भी पूछेंगे तो भी जागने से पहले बता देंगे मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, लेकिन दर्द मेरे शरीर में हो रहा है, सो नींद मेरे शरीर को आ रही है। सो लेकिन परोपकार के लिए क्रिश्चियनिटी में बहुत कहा गया है। यानी जहां तक परोपकार की बात है, बी इट थ्योरेटिकल, आई एल नॉट से कि रियली इट इज प्रैक्टिस्ड, आई एल नॉट से एंड आई एल नॉट कमिट माई सेल्फ, लेकिन कहा जाता है सीक नॉट टू बी कंसोल्ड बट कंसोल अदर्स। ये आशा मत रखो कि लोग आकर आपके साथ सहानुभूति करेंगे, आपका दर्द बांटेंगे, आप लोगों का दर्द बांटें, आप लोगों के साथ सहानुभूति करें, दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपको करना है। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि इट इज इन डाइंग दैट वी आर बॉर्न एटर्नली। बिल्कुल हिंदुइज्म से मिलती जुलती बात है कि अगर आप अपने आप को परमात्मा को सौंप देंगे, यानी अगर आप जो है अपना ये वर्तमान जीवन, जैसे हमें भी कहा जाता है ना, हम भी कोशिश करते हैं, प्रयास किया जाता है, मरजीवा जन्म जीने की हमें प्रेरणा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू बी डेड मटीरियली फिजिकली, ये नहीं कि आप गला घोंट लें अपना और कहें जी हो गया, वो बात नहीं है, यानी यू डोंट लिव मटीरियली, अपना वही बात आ जाती है, शरीर को भूल जाएं, आत्मिक लेवल पर जीवन जिए, तो वही कहते हैं कि इट इज इन डाइंग दैट यू आर बॉर्न एटर्नली। एटर्नली की बात वही आती है कि अगर आप भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से अपना जीवन छोड़ देते हैं, यानी नहीं जी रहे हैं और आत्मिक लेवल पर जी रहे हैं, परमात्मा के साथ जी रहे हैं, तो यू आर एटर्नली अलाइव, हमेशा के लिए अमर हैं फिर आप, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। सो ये कुछ एक बातें थी, लेकिन जो मेन बात क्रिश्चियनिटी के लिए हम कर सकते हैं, जैसे देखें सिखिज्म है, दूसरा इस्लाम है, यानी जितने भी इनके स्क्रिप्चर्स बने वो स्क्रिप्चर्स उस फाउंडर ऑफ दैट रिलीजन ने नहीं बनाए, यानी उस धर्म के स्थापक जो हैं उन्होंने स्क्रिप्चर्स नहीं लिखे। और इससे बढ़कर ये बात कि उस संस्थापक ने वो सारी बातें भी नहीं कही जो स्क्रिप्चर्स के अंदर है। अगर आपने गुरु ग्रंथ साहब को پڑھا ہو یا اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہو تو آپ جانیں گے کہ بہت سارے ایسے اس کے اندر جو شبد کہتے ہیں ویسے تو اس کو جس کو ہم پوئٹک فارم میں شلوک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہیم بھی کہہ سکتے ہیں، HYMN ہیم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یعنی جو ریلیجیس پریئر اور سانگ ہے اس میں گرو گرنتھ صاحب میں اس کو شبد کہا گیا۔ تو یہ جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر شبد ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ گرو نانک جی کے نہیں ہیں، سارے وہ نہیں ہیں، بعد میں کچھ گرو ارجن دیو کے ہیں، گرو گوبند سنگھ کے ہیں، دوسرے گروؤں کے ہیں، ان کو ان کے اندر ایڈ کیا گیا ہے اور تب جا کر یہ گرو گرنتھ صاحب جو ورتمان ستھتی میں ہے یہ تیار ہوا ہے۔ اسی طرح سے بائبل بھی جو ہے، جیسے ہم کئی بار کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، یعنی ایڈیشنز ہوتے رہے ان کے اندر، یعنی کرسچینٹی کو ہم نے 180 مان لیں عیسوی میں، جہاں سے پھر بعد میں عیسیٰ ورش شروع ہوتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو سن 430 میں آ کر لگ بھگ کرسچینٹی کے اسٹیبلش ہونے کے 400 سال کے بعد وہاں پر آ کر کئیوں نے، یعنی ڈفرنٹ لوگوں نے، سینٹ ایکویناس نے اپنی ایک ڈاکٹرین دی اوریجنل سن کی، جو آج کرسچینٹی کا انسیپریبل پارٹ ہے۔ اوریجنل سن یعنی واٹ از اٹ؟ اوریجنل سن کیا ہے؟ دا سن آف نالج، دیٹ از دی اوریجنل سن۔ سب سے پہلا پاپ جو کیا گیا اس کے پرینام سوروپ ہم مرتیو لوک میں آئے، یہ مانا جاتا ہے کرسچینٹی کے اندر۔ اگر آپ میں سے کسی نے انگلش لٹریچر پڑھا ہے اور ملٹن کو پڑھا ہو تو ہے، کوئی ملٹن کا پیراڈائز لاسٹ پڑھا ہو؟ پڑھا ہے نا، ہاں۔ سو دیکھیے اس کے اندر بالکل کلیئر سارے یہی بک ون کے اندر، بک ٹو کے ویسے 12 بکس ہیں اس کی، لیکن بک ون ٹو کے اندر سارا یہی ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ہاؤ دس ارتھ واز اسٹیبلشڈ، یہ مرتیو لوک بنا کیسے، اوریجنل سن کے پرینام سوروپ۔ وہاں پھر جو ہے، جیسے ہندو دھرم میں بھی، بھارتیوں میں بھی، دوسروں میں بھی، وہاں بھی استری کو دوشی مانا گیا، بنایا گیا، مانا تو نہیں بنایا گیا، یعنی جب پرماتما نے ایڈم اور ایو کو، پہلا ویکتی پروش اور استری کو بنایا اور ان کو ایڈن گارڈن یعنی سورگ میں رکھا، اور وہاں پر ایک ورکش جس کو فوربیڈن فروٹ کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہیں پوری سوتنترتا ہے اس سورگ میں، کچھ بھی کرو، کہیں بھی جاؤ، کوئی بھی کھاؤ، وٹ ایور یو ڈو، لیکن اس فوربیڈن فروٹ کو، اس ورکش کے پاس نہیں آپ نے آنا، اس کا پھل کبھی نہیں کھانا آپ نے۔ تو سیٹن، ان بریف جس کو ہم شیطان کہیں، کچھ کہیں، سیٹن کو لگا کہ پرماتما تو ایڈم کو بہت امپورٹنس دے رہا ہے اور میں بھی تو دیوتا ہوں، بے شک شیطان ہوں تو کیا ہوا، سو مجھے جو ہے پرماتما کی پلان کو جو ہے وہ خراب کرنا ہے، توڑنا ہے۔ تو ہی کیپٹ کمنگ ٹو ایڈن گارڈن، پہنچا کیسے، لمبی کہانی ہے۔ سو وہاں اس نے جو ہے کوشش کی ایڈم کو سمجھانے کی کہ دیکھو پرماتما آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، آپ کو یہاں چھوڑ دیا، آپ اکیلے، یعنی بھڑکایا کافی کچھ، ایڈم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایو کے پاس گیا، ایو بھی ہماری بھارتیہ سیتا کی طرح تھی، اور وہ بھی جو ہے گولڈن ہرن، یعنی وہ کانسیپٹ بھی تھوڑا سا سوچیں گے تو، یعنی سیتا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنہرا مرگ جو ہے وہ ہرن کے اوپر جو ہے اس کو رہا اور اس نے کہا کہ مجھے یہی چاہیے، کیوں، سیتا کو سونے چاندی کی کمی تھی کیا؟ مہارانی تھی نا وہ تو، اور وہ بھی جنگل میں، دیکھو تو سونا چاہیے جنگل میں چاہیے کیا، کیا کریں گے آپ اس کا، لیکن کہانی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ سو اسی طرح سے سیٹن بھی اس کے پاس جو ہے وہ بار بار کوشش کرتا رہا، الٹیمیٹلی اس کو لگا کہ شی کین بی لیورڈ ود سم اڈورنمنٹس، یہ چکا چوند کے لیے हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें तो कभी नहीं होती, लेकिन चकाचौंध की दीवानी होती हैं कुछ जो है। तो उसको लगा कि मैं इसको कैसे एल्योर करूं, तो ही बिकेम ए सर्पेंट, गोल्डन सर्पेंट, सुनहरा सांप बनकर वो उसके पास से गुजरा और बोलता हुआ गया। तो उसको ईव को हैरानी हुई, ए सर्पेंट, गोल्डन सर्पेंट एंड दैट टू टॉकिंग। उसने उसे पूछा, हाउ इज इट यू आर टॉकिंग? आई डोंट नो, पहले तो मैं कभी नहीं बोलता था, फिर कैसे बोल रहे हो? वो कहता कि यही यहां तुम्हारे इसमें गार्डन के अंदर कुछ है जो मुझे अल्योर किया, मैं वहां गया, मैंने वहां का कुछ खाया और मेरा ये परिवर्तन आ गया, मैं तो गोल्डन भी नहीं था। वो उसको बड़ा लगा, दिखाओ मुझे, ले गया ये फॉरबिडन फ्रूट, मैंने इसका फ्रूट खाया था, उसके बाद मैं गोल्डन भी हो गया और बोलने भी लग गया। तो उसने उसे कहा कि तुम भी खाओ। पहले तो उसको लगा परमात्मा ने मना किया हुआ, नहीं ये तो नहीं खाना। तो उसने कहा मैंने खाया ना, कुछ फर्क पड़ा? देखिए दैट इज हाउ सिन, पाप जो है हमें आकर्षित करता है। यानी कहानी, इसको कहानी के तौर पर ही लें, लेकिन उसका अंतर का अर्थ देखें कितना गहरा है। आदमी ऐसे ही तो एल्योर होता है बुरी बातों की तरफ। उसने उसको फिर कहा मुझे कुछ फर्क पड़ा? देखो मैं गोल्डन हो गया, कितना गंदा सांप था मैं तो, और मैं बोलने भी लग गया ना, खा के देखो कुछ नहीं होने वाला। खा लिया उसने। उसके बाद एडम आया, एडम नाराज, अरे क्या किया तुमने? कहती कुछ नहीं ना, परमात्मा बड़ा स्वार्थी है, देखो हमें, देखो ये बन गया इतना अच्छा, और परमात्मा ने हमें कहा कि तुम नहीं खाओ। वो नहीं चाहता हम ऐसे बने, परमात्मा नहीं चाहता कि हम इतने प्रभावशाली सुंदर और ऐसे अच्छे बने, लो तुम भी खाओ। अब उस एडम बेचारे ने ले लिया, खा लिया। जैसे ही खाया एकदम परमात्मा वहां आया, उसने पूछा, ईव से पूछा, ये क्या किया तुमने? उसने बताया। और जब बेचारे एडम से पूछा गया तुमने क्या किया, और देखिए वहां वो लाइन है उसमें, शी गेव मी आई टुक इट, शी गेव मी आई टुक इट, उसने मुझे दिया मैंने खा लिया, दैट इज। और उसके बाद परमात्मा ने दोनों को श्राप दिया और इस मृत्यु लोक में फेंक दिया कि तुम जाओ, और दोनों को श्राप दिया, स्त्री को कि तुम अपने ही जीवन में कई बार मर कर जियोगी, और पुरुष को ये श्राप दिया कि तुम सारी उम्र स्त्री के गिर्द घूमते परेशान होते रहोगे। एंड दैट इज व्हाट वी पीपल आर डूइंग, ना? ये हो रहा है। स्त्री देखिए जब भी बच्चे का जन्म होता है तो वो मर कर जीती है, हालांकि हम इसको कितनी भी उपमा दे दें उस बेचारी के लिए। आई कॉल माई सेल्फ ए फेमिनिस्ट सम टाइम, मैं बहनों के प्रति बहुत मुझे सहानुभूति रहती है, और मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा इनका ही साथ दूं, भाइयों का ना भी दूं तो कोई बात नहीं। सो रीजन बीइंग के बहुत सहनशीलता है इनमें, बहुत मेहनत है और बहुत सेक्रीफाइसिंग है, एंड दे कीप डूइंग। यानी आप कितना भी कर लें, ये कितनी भी थकी हुई हो, आप जरा सा परेशान होंगे तो आपकी सेवा में लग जाएंगी, अपने दुख भूल जाएंगी, सारा कुछ वगैरह। लेकिन हम पुरुष क्या करते हैं, मुझे कई बार, एक बार मेरे अपने साथ हुआ, फिर आप कहेंगे हुआ क्या, कि मैं वैसे ही अखबार पढ़ने का शौक था, अखबार पढ़ रहा था, तो उसी समय मेरे को लगा कि पंखा चल नहीं रहा, जरूरत है, तो मैंने अपने युगल को आवाज लगाई और मैंने कहा जरा पंखा ऑन कर दो। शी केम स्विच्ड ऑन द फैन, और जाने लगी तो शी लुक्ड एट मी इन ए पर्टिकुलर वे। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह लगी आपका हाथ देना तरह, एक बार दाएं हाथ में दिया, उसने यूं किया और कहती ये स्विच पर पहुंच गया हाथ आपका। समझ गए आप कि आप बैठे हुए ये नहीं कर सके, और मैं किचन में काम कर रही थी, वहां से आवाज लगाई और मैं आई और आपके लिए मैंने स्विच ऑन किया। दिस इज व्हाट वी मेन आर, हम आदमी लोग ऐसे हैं। कभी सोचे तो लगता है, लेकिन फिर भी हमें गर्व तो होता है. सो दैट इज हाउ मैन एंड वुमन वर क्रिएटेड एंड सेंट टू अर्थ. सो सेंट एक्विनास ने ये डॉक्ट्रिन दी डिसओबीडियंस की, कि जब जब इंसान परमात्मा को डिसओबे करता है वो बहुत सफर करता है. और उसने ये कहा ओरिजिनल सिन के अंदर कि इंसान का जीवन एक स्ट्रगल है बिटवीन द गुड एंड द ईवल, अच्छाई और बुराई के बीच में एक जद्दोजहद है, एक लड़ाई, एक टसल है, टग ऑफ वार है. सो इसीलिए यानी उसको कहा, और उसने ही ये कहा कि जब परमात्मा ने इंसान को धरती पर भेजा तो वो सिर्फ इसीलिए भेजा कि इंसान इस जीवन की हार्शनेस को, कठोरता को, क्रुएलिटी को और ब्रूटेलिटी को एक्सपीरियंस कर सके, तब उसको पता लगेगा कि इंसानी जीवन क्या है. दैट इज व्हाट सेंट एक्विनास सेड. सो यानी ऐसे ही और लोगों ने भी जो है काफी इसमें जोड़े. सॉरी सेंट एक्विनास नहीं, सेंट ऑगस्टाइन था, सॉरी थॉमस एक्विनास बाद में आया. यस वो बाद में आया, बल्कि लगभग वो 1225 ईस्वी में आया. और उसने जो है थॉमस एक्विनास ने 7 डेडली सिंस का थ्योरी दी, यानी ये वो पाप, जैसे हम कहते हैं ना 5 विकार, 5 काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वगैरह हम कहते हैं, तो उन्होंने उनके 7 डेडली सिंस हैं, यानी वो पाप जिससे इंसान को हमेशा बचना चाहिए. और वो क्या हैं? दीज आर प्राइड, प्राइड, एवरेस्ट, और हिंदी की बुक है ना, मुझे दिखा, मैं नहीं नहीं मैं बोल ही देता हूं ना फिर. ये है, दैट इज वैसे प्राइड है, एवर, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं पहले, प्राइड, एवरेस, लास्ट, लास्ट काम, एंगर, ग्लटनी, ग्लटनी मीन्स बहुत खाने का लालच होना, बहुत खाना, एनवी, ईर्ष्या, और लेजीनेस, आलस्य. मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य तथा अधिक आहार, अत्यधिक खाना. दीज आर द 7 डेडली सिंस. अगर आदमी परमात्मा को पाना चाहता है तो ही शुड रिकंसाइल विद द नॉलेज ऑफ गॉड. इन विकारों से बचकर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें, परमात्मा की ओर बढ़े. आप ये देखें कि ईसा मसीह 1 AD से चलता है और विकारों की बात आकर होती है 1200 सालों के बाद. यानी रिलीजन इस तरह से विकसित होते रहते हैं, डेवलप होते हैं और नई नई सिद्धांत, थ्योरीज उन रिलीजन्स के अंदर जुड़ते रहते हैं. सो क्रिश्चियन वैल्यूज, बेसिकली क्रिश्चियन वैल्यूज क्या हैं? यानी क्राइस्ट ने तो अपनी तरफ से विमेन को बहुत एनकरेज किया, अपनी टीचिंग्स के अंदर भी उनको लेकर आया, लेकिन क्राइस्ट का सबसे बड़ा गुण यह था कि वो रेसिस्ट नहीं था. यानी रेसिज्म में, जातिवाद में उसको किसी प्रकार का विश्वास नहीं था. हालांकि उसने जो यहूदी कल्चर थी उस वक्त की, पैट्रियार्कल कल्चर जिसके अंदर जो है पुरुष प्रधान समाज है, उसका विरोध किया उसने, क्राइस्ट ने. और उसने ये भी कहा कि जो लोग सफर करते हैं, सह लेते हैं, महात्मा गांधी की थ्योरी, अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दीजिए, तो वो ये कहता है ब्लेसेड आर द मीक पीपल, जो लोग मीक हैं, हम्बल हैं, सबमिसिव हैं, वो नम्र हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं, ब्लेस्ड हैं, परमात्मा उनका ध्यान रखता है. और कुछ बातें जो उन्होंने, क्राइस्ट ने मेनली कही, वो ये कि आदमी के जीवन के अंदर विश्वास, फेथ, होप और चैरिटी, दान करना, परोपकारिता, सदा आशा रखना, परमात्मा में विश्वास रखना, ये मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। साथ में उसने ये भी कहा कि जो मंक्स और नंस हैं, यानी ये जो साधु हैं पुरुष या स्त्रियां, यानी नंस स्त्रियां, मंक्स जो हैं MONK मंक्स जो हैं, वो ऑलवेज दे शुड रिमेन प्योर तो रहें, लेकिन दे शुड लीड ए पुअर लाइफ, यानी धन से परे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है, फंडामेंटल है, वो ये है कि अगर आप धनी हैं तो आप स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हैं। यानी उनमें उन्होंने यहां तक कहा है कि सुई की नोक में से ऊंट तो गुजर सकता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता है। यानी इम्पॉसिबल हो सकता है कि सुई की नोक में से ऊंट या हाथी आप गुजार दें, लेकिन किसी धनी व्यक्ति को आप स्वर्ग में पहुंचा सकें, ये असंभव है। दैट इज व्हाट दे से। सो आप बुरा ना माने, नहीं बाबा तो गरीब निवास है ही सही, लेकिन बाबा कहते हैं धनी लोग भी हैं तो वो भी आएंगे ना, अगर वो अपने धन का स्कार्थ इस्तेमाल करेंगे, सफल करेंगे, तो उनके लिए भी स्वर्ग का रास्ता बंद नहीं हुआ है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कह दिया गया कि उनके लिए तो दरवाजे बंद हैं, खुल ही नहीं सकते हैं। अगर आपके पास धन का बोझ है तो वो स्वर्ग के अंदर नॉट अलाउड का बोर्ड लगा हुआ है उनके लिए। सो इसीलिए उनके लिए कहा गया, मंक्स वगैरह के लिए, कि दे शुड लीड ए पुअर लाइफ, ए चेस्ट लाइफ, ए लाइफ ऑफ ओबीडियंस, यानी वो आज्ञा का पालन करें, पुअर जीवन व्यतीत करें और पवित्र जीवन व्यतीत करें। मनी को, जैसे मैंने कहा, रूट कॉज ऑफ ऑल ईवल माना गया है, और फिर इसके साथ ही मर्सी और फॉरगिवनेस जो है वो क्रिश्चियनिटी के फंडामेंटल्स है। मर्सी, दया करें, फॉरगिवनेस, क्षमा करें आप, यानी दूसरे को भूलें, क्षमा करें आप उसको, इन दैट इज। और एथिकल वैल्यूज जो हैं, जिसके लिए अक्सर हर एक क्रिश्चियन को कहा जाता है कि वर्शिप वन गॉड ओनली, एक ही परमात्मा को माने, किसी भी बुत की, यानी बुत परस्ती वहां नहीं है, यानी किसी बुत की पूजा करना नॉट अलाउड, वो नहीं है। और संडे को, वो कहते हैं जिसको सब्बात कहा जाता है, संडे को आप कोई किसी तरह का बिजनेस नहीं करेंगे, संडे को आपको परे रहना है। और उसके बाद, यानी वो ये भी कहते हैं वैल्यूज के अंदर, एथिकल वैल्यूज के अंदर, यू शुड ऑनर योर पेरेंट्स, शुड नॉट कमिट मर्डर, किसी को मारे नहीं, अडल्ट्री नहीं करें, यानी अपने विवाहित जीवन के अंदर जो है वफादार रहें, और थेफ्ट जो है, चोरी चकारी के से बचकर रहें, उसमें नहीं करना, और किसी दूसरे की वस्तुओं को देखकर जो है उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना, यानी ईर्ष्या नहीं करनी। अगर कोई किसी व्यक्ति के पास धन दौलत है या कंफर्ट्स हैं तो आपके पास जो है वो नहीं है, तो आपको ये लालच नहीं होना चाहिए कि वो मेरे पास भी हो और मैं भी कोशिश करूं और उठा लूं, चुरा लूं, छीन लूं, मार डालूं उसको। नो, यानी वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। तो ये मॉरल प्रिंसिपल्स तो लगभग हर धर्म के अंदर होते ही हैं। सो लेट्स कम डाउन टू इस्लाम। यानी इस्लाम का ये एक, जिसको हमने ये कहा, मोनोथीस्ट फेथ है, यानी एक परमात्मा, किसी भी तरह से दो नहीं हो सकते, एक ही विचार। और एक चीज और भी मैं इस्लाम के बारे में शुरू से कहूंगा कि बहुत थोड़े धर्म ऐसे हैं जिनके अंदर व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ उसके कल्चरल जीवन को भी डायरेक्ट किया गया है। यानी इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो ये भी बताता है कि समाज को कैसे चलाया जाए। इस्लाम, जैसे वी मोस्ट ऑफ अस नो, पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में इस धर्म की स्थापना की, और کہا جائے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، پیغمبر محمد نے کیوں محسوس کی یا کس لیے کیا گیا؟ جیون کے اندر اس سمے شاید ان کو یہ لگا کہ انسان پرماتما سے پرے ہے، پرماتما کی طرف نہیں جھکاؤ اس کا، اور اس سمے ہندو دھرم بھی اس طرح سے اسٹیبلشڈ نہیں تھا. بے شک کنگ اشوکا بھی ہوئے، چندرگپت موریا وغیرہ بھی ہوئے، جنہوں نے دھرم کے پرسار کے لیے، چاہے بدھزم کے لیے چاہے ہندوازم کے لیے، پورے پریاس کیے، لیکن اس کے باوجود بھی دھرم کا وہ ستھان سماج کے اندر نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. اور منشیہ کو ایک آئیڈیل ہیومن بینگ کیسے ہونا چاہیے، ایک آدرش منشیہ کون ہے، اس کا ورنن بھی کہیں ملتا نہیں تھا. ان کو لگا نہ بدھ دھرم میں ایسا ہے، نہ ہندوازم میں ہے، نہ کرسچینٹی میں ہے، نہ یہودیزم میں ہے، کسی بھی دھرم کے اندر یہ باتیں نہیں کہی گئی ہیں. اسی لیے اسلام کے تین فنڈامنٹلز ہیں جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی انڈیویجول سبمیشن ٹو اللہ. انڈیویجول شبد، انڈیویجول پر سٹریس دیں آپ، ہر ایک انسان، گروپ نہیں، پریوار نہیں، سماج نہیں، سماج کے اندر پرماتما کا بول بالا ہو یہ نہیں، ہر انسان کو، ہر ویکتی کو اپنے ویکتیگت جیون کے اندر سویم کو پرماتما کے ارپن کرنا ہے. انڈیویجول سبمیشن ٹو اللہ، یہ میننگ ہے اس کا. تبھی ان کے لیے یہ ضروری بھی ہے پانچ ٹائم کی نماز ہر ویکتی کے لیے. ہر ویکتی کے لیے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ اپنے جیون میں حج کے لیے اوشیہ جائیں گے، یہ بھی ہے. یعنی وہاں انڈیویجول کو گرو کرنے کے لیے، پرماتما کے نکٹ آنے کے لیے پریرت کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام ایک کانکریٹ ہسٹوریکل ریئلٹی ہے. میں ایکسپلین کروں گا اور کمپیئر کروں گا. اسلام ایک کانکریٹ، ایبسٹریکٹ نہیں، امورت نہیں، مورت، کانکریٹ ہسٹوریکل ریئلٹی ہے. یعنی اس دھرم کی ستھاپنا سنستھاپک نے دھرم کے روپ میں کی. اب آپ اس کو دیکھیں، کیا عیسیٰ مسیح نے کرسچینٹی کو اسٹیبلش کیا کہ میں کرسچینٹی کو اسٹیبلش کر رہا ہوں؟ نو. مہاتما بدھ نے کیا؟ نو. ہندوازم کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کو ستھاپت کس نے کیا، لیکن پیغمبر محمد نے دھرم کی ستھاپنا کی. دیٹ از وائی ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت ہی کم دھرم ایسے ہیں اتہاس کے اندر جن کو اس سنستھاپک نے دھرم کے روپ میں اسٹیبلش کیا. دیٹ از وائی اٹ از اے ہسٹوریکل ریئلٹی، اتہاسک ستیہ ہے یہ. یہ شبد آپ بدھزم کے لیے، کرسچینٹی کے لیے، جیوئزم کے لیے، ہندوازم کے لیے نہیں استعمال کر سکتے کہ یہ ایتہاسک ستیہ ہیں. اس دھرم کی ستھاپنا دھرم ہیں، نو ڈاؤٹ یہ دھرم ہیں، لیکن ان کی ستھاپنا ایتہاسک ستیہ ہے کیا؟ وی کانٹ سے، بٹ وی کین سے اباؤٹ اسلام. ایک بات اسی لیے اس کے ساتھ ہی قرآن کے اندر جو دھارمک گرنتھ ہے ان کا، قرآن کے اندر ایک آدرش منشیہ کا جیون کیسا ہو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا कल्चरल लाइफ को डिस्क्राइब किया गया इसमें। एक आदर्श व्यक्ति का, एक आदर्श समूह का, एक आदर्श परिवार का जीवन किस प्रकार हो वो कुरान के अंदर बताया गया है। यानी एक इंडिविजुअल को अपना दैनिक जीवन, अपना सामाजिक जीवन, अपना व्यावसायिक जीवन किस प्रकार जीना चाहिए ये कुरान के अंदर है। ये तीन फंडामेंटल्स जो हैं कुरान के हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कुरान की, तो होली कुरान जिसको हम उनका पवित्र ग्रंथ कहते हैं, यानी उसको ये कहा जाता है कि ये कुरान और कुछ नहीं है, परमात्मा ने पैगंबर मोहम्मद को जो जो बातें कही और पैगंबर मोहम्मद ने वो बातें आप सबको बताई और वो कुरान के अंदर लिखी गई हैं। दैट इज यू कैन से दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गॉड गिवन टू मैन थ्रू पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से परमात्मा ने अपना जो निर्देश है मनुष्य को दिए और वो कुरान के अंदर लिखी गई हैं। इसीलिए कुरान बहुत डिटेल्ड है, उसके अंदर 114 सूरा कहते हैं चैप्टर को अध्याय 114 सूराज हैं उसके अंदर जो है। और नेचुरली जब 114 चैप्टर हैं तो बड़ा डाइवर्स कंटेंट है उसके अंदर, यानी बहुत तरह तरह की बातें, जीवन के हर पहलू को जो है डिस्क्राइब करने का प्रयास किया गया है। नेचुरली वहां अल्लाह को भी सर्वशक्तिमान कहा गया है, ओमनीपोटेंट है वो, और कहा गया फॉलोअर्स को कि केवल अल्लाह में विश्वास करें, किसी और को मानना नहीं है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि अल्लाह को ना मानना एक कुफ्र है, जुर्म है। यानी तभी वो ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को काफिर कहते हैं। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं वो काफिर हैं, और अल्लाह को ना मानना एक कुफ्र है, एक जुर्म है, संगीन जुर्म है, वो नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि परलय का दिन, डे ऑफ जजमेंट, परलय का दिन जब आता है तो हर इंसान को अपने कर्मों का फल चुकाना होता है, और अपने किए के अनुसार उसको या तो बहिष्त मिलता है या दोजख मिलता है, या वो नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है, जैसा जैसा उसने किया। बट दैट इज टू बी डिसाइडेड ओनली ऑन द डे ऑफ जजमेंट, नॉट बिफोर दैट। और उससे पहले डे ऑफ जजमेंट, परले नहीं, परले का दिन डे ऑफ डेथ नहीं है। डे ऑफ डेथ, देखिए ध्यान रखिए, परले का दिन डे ऑफ डेथ नहीं है। मृत्यु का दिवस मेरा आज हो सकता है, लेकिन परलय कब आएगी? हो सकता है परलय अब से 500 सालों के बाद आए। वैसे तो उन्होंने पहले 1450 साल कहा था, आई डोंट नो एग्जैक्ट उसका क्या, आई डोंट नो, आई नॉट कमेंट ऑन दिस, लेकिन उन्होंने लगभग जब इस्लाम स्थापित हुआ था तो तब कहा गया था कि 1450 वर्षों के बाद, और उनका वर्ष भी जो है इस्लामिक ईयर है, अगर आप ध्यान रखें, यानी क्रिश्चियन ईयर के मुताबिक हम चलते हैं तो हमारा जो है सोलर ईयर है, यानी सूर्य के साथ लिंक्ड है, सूर्य की गति के साथ हमारा वर्ष बनता है। लेकिन इस्लामिक ईयर जो है वो चांद की गति से चलता है, जैसे हिंदुओं में भी जो है तो चांद की गति से चलता है, तो इसीलिए उनके वर्ष का भी दिन जो है वो कम होते हैं, यानी लगभग 28 दिन का एक महीना होता है, और वो किस तरह से पूरे साल को डिवाइड करते हैं दैट इज अप टू देम। यानी वो जिसको हिज्र कहते हैं, हिजरा कहते हैं, यानी वो उनका, जैसे हमारा विक्रमी संवत हम कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में जो है एनोडोमिनी कहते हैं, एडी जिसको हम कह देते हैं एनोडोमिनी। सो क्रिश्चियंस के अंदर वो है, हमारा विक्रमी संवत है, उनका हिजरा है। तो यानी ये अलग अलग अपने समय से उन्होंने बांटा हुआ है, किया हुआ है। तो भाई साहब जैसे पूछ रहे थे कि मौत का, तो वो परलय का वो दिन है जब सारी आत्माएं یعنی آتما کہوں شریر کہوں جو بھی، یعنی جو سب دفن ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ دفن کرتے ہیں، یعنی منشیہ مر جاتا ہے شریر چھوڑتا ہے تو مرنے پر اس کو دفن کیا جاتا ہے، اسلام کے مطابق وہ سارے دفن ہو کر وہ آتمائیں وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہیں اپنی قبر کے اندر، اور جب ڈے آف ججمنٹ ہوتا ہے یعنی پرلے کا دن جب آئے گا تب ساری آتمائیں اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گی اور پرماتما کے پاس پہنچیں گی۔ کہیں ایسا نہیں لگتا وہ برہما کماریز والا درشیہ کہ مچھروں سدرشیہ سارے کے سارے بھاگے، یعنی کہیں، یعنی آپ اس کو یہ نہ کہیں، آپ، میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ کمپیئر کریں، کمپیئر کریں، کہیں نہ کہیں کہیں کچھ ملتا ہے، کہیں کچھ ملتا ہے، کسی نے آپ اس کو دیکھیں، الٹیمیٹلی ایک اوور آل پکچر تیار ہوتی ہے، ایک اوور آل پکچر تیار ہوتی ہے، اس کو آپ کوشش کریں نہ تیار کرنے کی۔ سو یعنی ڈے آف ججمنٹ پر سارے اٹھتے ہیں، اور اسی لیے وہ ہیون اور ہیل کی کہانی بھی بتاتے ہیں، لیکن جو اسلام کے اندر سب سے بڑی بات ہے وہ ہے سوشل لیجسلیشن، شریعت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی سوشل لیجسلیشن کہ آپ کیا کریں گے، آپ کو کیا سزا ملے گی، کیا اس کا فیصلہ عدالت نہیں کرتی ہے، اس کا فیصلہ قاضی کرتا ہے، قاضی جو ان کا پریسٹ کہہ لیں مسلمز کا، یعنی شریعت کے مطابق، شریعت یعنی جیسے ہم نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اس جرم کی یہ سزا اور یہ کرنے پر یہ اور وغیرہ، تو وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ سارا دیا ہوا ہے۔ یہی کارن ہے بہت سارے مسلم کنٹریز کے اندر جو ہے شریعت کا لا ہے، یہ جو گلف ہے اب تو اس میں کچھ ایک بدلاؤ آ گیا، جتنے گلف کنٹریز ہیں، امیرات وغیرہ کے سارے جتنے بھی آتے ہیں، یہ دبئی ہے، دوہا ہے، قطر ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی آتے ہیں دیش، وہاں پر شریعت کا نیم چلتا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کا نقصان کیا تو یہ نہیں کہ آپ کو جیل کر دیا جائے گا، اتنا نقصان آپ کا کیا جائے گا، آئی فار این آئی، ٹوتھ فار اے ٹوتھ، اگر آپ نے کسی کا دانت توڑ دیا تو آپ کا دانت ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، یعنی اور ایسے دھرم کے اندر، یعنی ایسے لیجسلیشن کے اندر پبلک پنشمنٹ، پبلک ایگزیکیوشن واز ویری کامن، پبلکلی لوگوں کو ہینگ کر دینا، لوگوں کے سامنے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دینا، لوگوں کی آنکھیں نکال لینا، یعنی یہ کامن فارم آف پنشمنٹ تھی، اور وہ ان کا اپنا آرگیومنٹ ہے، لاجک ان کی اپنی ہے، شاید وہ ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اوروں میں ڈر پیدا ہوتا ہے، کوئی جرم نہیں کرتا ہے پھر، سو وہ ان کا ہے، لیکن وہ سوشل لیجسلیشن بھی اس میں ہے۔ تو اس میں دو تین باتیں آپ یاد رکھیں جو ان کی بکس ہیں، اسکرپچرز ہیں، ایک تو اسکرپچر ان کی حدیث کہتے ہیں جس کو ایچ اے ڈی آئی ٹی ایچ، حدیث، حدیث کیا ہے؟ پیغمبر محمد نے جو جو کہا جیسے کہا وہ حدیث کے اندر ہے، دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا سننا جس کو کہ ایس یو ڈبل این اے، وہ ہے اس کی ڈیلی پریکٹس، یعنی منشیہ کی، ویسے تو ہے اس میں کہ پیغمبر محمد کا، لیکن منشیہ کا دینک جیون کیسا ہونا چاہیے وہ سننا کے اندر بتایا گیا ہے، دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے اور اسکرپچرز بھی کئی ہیں، لیکن حالات پولیٹیکل اس طرح کے ڈیولپ ہوئے کیونکہ وہاں مدینہ وغیرہ میں جہاں پیغمبر محمد تھے، حالات پولیٹیکل ایسے ہوئے کہ پیغمبر محمد کے ورودھی بہت ہو گئے، اور پرینام سوروپ جو ہے پیغمبر محمد کو بھی مدینہ سے بھاگنا پڑا، اور سن 622 عیسوی کے اندر ہی ہیڈ ٹو رن اوے فرام دیٹ۔ خیر، وی آر ناٹ مچ کنسرن۔ بریفلی، اسلام کے پانچ پرمکھ باتیں ہیں جو اسلام کو پڑھتا ہے یا اسلام پر کچھ کہنا چاہتا ہے اس کو وہ پانچ باتیں ضرور یاد ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمز کے لیے پہلا پلر ہے ان کا ایمان، فیتھ، ایمان۔ دوسری بات ہے صلاح، یعنی جس کو آپ سلط بھی کہہ سکتے ہیں ایس اے ایل اے ایچ یا ایس اے ایل اے ٹی سلط بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کیا ورشپ یعنی ورشپ پوجا 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 اس سینس میں نہیں کیونکہ آئیڈولیٹری کے بالکل اگینسٹ ہے وہ بت پرستی بالکل نہیں کسی بھی طرح کی جو ہے وہ آپ دیکھیں ان کی مسجد کے اندر کہیں بھی کوئی مورتی نہیں رکھی جاتی ہے کہیں بھی وہ دھوپ اگربتی والا چکر نہیں ہے ان کا جو ہے سو اگربتی صرف وہ خوشبو کے لیے پرماتما کے لیے نہیں وہ تو اب کرنے لگ گیا نا اب تھوڑے دیر میں کچھ اور کرے ہاں وہ تو وہ ماڈرنائز ہو رہے ہیں یعنی دیکھیے مین چیز کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلم کو دن میں 5 بار قرآن ضرور پڑھنی چاہیے پوجا کرنی چاہیے پرماتما اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس سمے کہیں بھی ہوں آپ وہیں بیٹھ جائیں اپنی چٹائی بچھا لیں اور وہاں بیٹھ جائیں irrespective of the fact کہ آپ کسی پبلک پلیس پر ہو یا کہاں ہو شاید آپ کو حیرانی ہوگی کسی بھی آپ شکروار کے دن جو ہے جمعہ شکروار کو کہتے ہیں نا ہاں کسی بھی جمعہ کے دن جو ہے آپ دلی میں کسی مسجد کے آس پاس سے گزریں تو آپ وشواس کریں گزر نہیں سکتے کارن یہ کہ وہ سڑکیں ساری بند ہوتی ہیں وہ لوگ سڑک کے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں آپ نہیں جا سکتے وہ راستہ ہی بند ہوتا ہے کہ وہ نماز کا سمے ہے ان کا تو نماز کو پڑھنا جو ہے وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے 5 ٹائم دن میں اٹس اسینشیل اسی طرح سے پھر یہ کہا جاتا ہے ان کے لیے نیکسٹ جو ہے وہ سوم ایس اے ڈبلو ایم جس کو یعنی ایبسٹیننس آف فوڈ یعنی آپ بھوجن نے ورت رکھنا جس کو ہم ہندوؤں میں کہتے ہیں کہ دن کے سمے رمضان کے مہینے میں آپ بھوجن نہیں کریں گے دن کے سمے رمضان کے مہینے میں آپ بھوجن نہیں کریں گے اور بہت دقت ہوتی ہے کئی دیشوں میں یعنی مجھے کویت وغیرہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں انبھو ہے کہ وہاں پر جو ہے کویت میں دن کے سمے رمضان کے مہینے میں آل ایٹریز آر کلوزڈ اور دوسری بات اگر آپ مسلم نہیں بھی ہیں تو کسی بھی مسلم کے سامنے اگر آپ کچھ بھی کھاتے ہیں یا پانی بھی پیتے ہیں تو آپ قصوروار ہیں اور آپ کو دنڈ دیا جائے گا یعنی آپ ان کے دھرم کو توڑ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو اکسا رہے ہیں لالچ اکسا رہے ہیں دیٹ از واٹ دے فیل سو سوم اور اس کے بعد جو ہے زکت زیڈ اے کے اے ٹی زکت یعنی کہ آپ چیریٹی کریں دان کریں اپنی جتنی بھی انکم ہے اس کا 2.5% جو ہے 2.5 2.5% آپ جو ہے وہ دان میں دیں چیریٹی میں دیں اور لاسٹ آف آل حج حج ایچ اے ڈبل جے حج کہ آپ جو ہے مکہ مدینہ کا جیون میں ایک بار یاترا اوشیہ کریں اور یہی کارن ہے کہ ہندوستان کے اندر حج کے لیے جو ہے وہ سبسیڈائزڈ فلائٹس بھی دی جاتی ہیں مسلمز کے لیے اور سنکھیا بھی کئی ہزاروں میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے جن کا خرچہ گورنمنٹ آف انڈیا اٹھاتی ہے ان کو لے جانا واپس لے آنا آئی ڈونٹ نو کیوں ہوا یہ بٹ اسٹل اٹ از لیکن اب جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم ایک چھٹا پلر بھی جو ہے ایک چھٹا فنڈامنٹل بھی جو ہے مسلمز نے ایڈ کر دیا ان 5 کے اندر اور وہ چھٹا ہے جہاد جہاد یعنی حالانکہ اس کو کوئی آفیشل سٹیٹس نہیں ہے یعنی قرآن کے اندر یا ایسا آفیشل سٹیٹس نہیں ہے لیکن جہاد کو جو ہے مسلمز نے پریکٹس کے اندر اپنا لیا ہے جس کا ارتھ یہ ہے کہ ہم نے پرماتما کے نام کا پرسار کرنا ہے بریفلی جہاد وہ ہے لیکن کیسے کرنا ہے وائلنٹلی کرنا ہے اپوزیشن کو سپریس کرنا یہ آج کا یعنی اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ بن گیا یعنی جو کئی کنٹریز نے یا کئی گروپس نے وہ اس کو ٹیررزم کی شیپ دے دی جہاد کا نعرہ دے دیا کیا کیا یعنی لیٹس ناٹ کم ٹو دس کنٹروورشل ایشو لیکن جہاد بھی ایک چھٹا پلر ہے اسلام بریفلی لاسٹلی کمنگ ٹو یعنی اللہ کے 99 نام دیے گئے ہیں آپ کی کتاب کے اندر ہیں وہ वो मक्का मदीना के अंदर जो है वो प्रायश्चित है उसको ताज नहीं नहीं ताजिया तो वो जलूस होता है जिसके अंदर वो लेके जाते हैं अपना हसन हुसैन है। यानी कहने का भाव क्या है कि जब पैगंबर मोहम्मद 622 ईस्वी में उनको भागना पड़ा तो वहां हसन हुसैन ने उनके साथ जो है वो कुछ ऐसा किया जिसके कारण उन्हें भागना पड़ा। जैसे जो है क्राइस्ट के लिए भी लास्ट सपर कहा जाता है, जहां जो है ईसा मसीह नीचे बैठे थे एक सेलर के अंदर, एक नीचे तहखाने के अंदर, तो वहां उनको पता नहीं था कि पुलिस या लोग जो है राजा के लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तो अपने ही किसी ने बिट्रे किया और वहां आकर उसको गिरफ्तार किया गया। उसी तरह पैगंबर मोहम्मद को भी भागना पड़ा। वैसे हम संक्षेप में एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं मुस्लिम होने का अर्थ ये है कि आपके अंदर जो है फेथ और कल्चर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी ये नहीं कि मैं, जैसे हम हिंदुइज्म में हम कहें मैं धार्मिक हिंदू हूं तो मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं धार्मिक मुस्लिम हूं तो नहीं, मुझे समाज का भी पूरा का पूरा जीवन वैसा जीना है जैसा कि जो है कुरान के अंदर कहा गया है। दिस इज व्हाट वी हैव टू से अबाउट इस्लाम। एंड कमिंग टू सिखिज्म, ये एक ऐसा, आप ये कह सकते हैं यंगेस्ट रिलीजन कह सकते हैं, अपने बचपन में है ये कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रतिक्रिया थी, ये धर्म एक प्रतिक्रिया थी हिंदू और मुस्लिम विश्वास को कंबाइन करने के लिए। और जो दिक्कतें किसी एक धर्म से दूसरे धर्म वालों को हो रही हैं उनसे बचाने के लिए, यही कारण है कि सिखिज्म थोड़े समय बाद मार्शल रेस भी बन गया। यानी हालांकि इसकी स्थापना 1500 ईस्वी में हुई, यानी 1469 से 1539 तक गुरु नानक जी थे और उन्होंने इसकी स्थापना की, लेकिन 1700 से पहले पहले 1699 में जाकर जो है जब गुरु गोविंद सिंह ने इसको जो है खालसा पंथ बना दिया, मार्शल रेस बना दिया, यानी क्योंकि ऑपरेशन उस वक्त इतनी ज्यादा, पॉलिटिकल ऑपरेशन इतनी बढ़ती जा रही थी कि उन्होंने ये स्टेप लिया उस वक्त जो है। लेकिन हम ये कहें कि सिखिज्म गुरु नानक ने स्थापित किया और उसके बाद जो है 9 गुरु आए, गुरु नानक के बाद 9 आए, इसीलिए दशम गुरु कहा जाता है गुरु नानक को एक मानकर चले तो। लास्ट जो है गुरु गोविंद सिंह थे और उस वक्त उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा, और यानी वहां ये सिखिज्म में कही जाती है गुरु मान्यो ग्रंथ, यानी उनको ये कहा गया कि अब आपका गुरु जो है ग्रंथ आपका गुरु है, उसके गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ही यही है गुरु मान्यो ग्रंथ, यानी हमारा ग्रंथ ही हमारा गुरु है, हम किसी व्यक्ति विशेष को अपना गुरु नहीं मानेंगे। गुरु गोविंद सिंह के बाद ये बात हुई। लेकिन इन्होंने थ्रू आउट द टाइम 1500 ईस्वी से लेकर जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई या उससे पहले 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, तो यानी कहने का भाव ये कि 1500 से लेकर 1700 ईस्वी तक जो है ये हमेशा लड़ते रहे, लेकिन ये एक बैटल थी, ए सॉर्ट ऑफ अनसक्सेसफुल बैटल अगेंस्ट द पॉलिटिकल रूलर्स। ये नहीं कि सफल हुए वो, नहीं, सफल भी नहीं हो पाए। यानी उन्होंने कोशिश की मुस्लिम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करने की, लेकिन मुस्लिम्स वर सो एस्टेब्लिश्ड एंड दे वर सो पावरफुल कि ये लोग जो हैं सिख, जितने भी सिख लोग परिवर्तित हुए सिख बने, वो इनका सामना नहीं कर पाए। इसी कारण से, इसी कारण के वो सिखों को जो है इनका ऑपरेशन का वो सामना कर सके, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की 1699 के अंदर, उनकी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास किया और उनको 5 जो है वो क, जिसके लिए हम कहते हैं केश, कड़ा, कंघा, कृपाण, कच्छा, यानी ये चीजें पांच जो है कही जाती हैं उनके लिए, यानी हर एक जो सिख है उसको ये चीजें धारण करनी चाहिए, यानी ये उसकी पहचान है। यानी किसी भी सिख को जो है अपने केश यानी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, कंघा उसको हमेशा रखना चाहिए, कच्छ जो है उसका उसकी अंडरगार्मेंट्स जो है, कृपाण यानी सामना करने के लिए हमेशा उसके पास कृपाण होनी चाहिए, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कड़ा यानी बाजू के अंदर जो ब्रेसलेट जैसे हम कहते हैं बहने पहनती हैं अक्सर, सो वो ये पांच जो है उनके पहचान के चिन्ह हैं, तो वो इसको जरूर धारण करें। सिखों का जो होलीएस्ट प्लेस वो भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ही है, जो है उसको बाद में ऐड किया गया, हालांकि इसको बहुत लेट बनाया गया था, 1580 के आसपास जो है इसका निर्माण किया गया गोल्डन टेंपल का। सो उसका होलीएस्ट प्लेस यानी सिखों का तीर्थ स्थान, बहुत कम धर्मों के अंदर तीर्थ स्थान का नाम दिया जाता है, लेकिन सिखों के अंदर जो है वो तीर्थ स्थान यही है, और उनका पवित्र जो शास्त्र है वो आदि ग्रंथ साहब है, यानी गुरु ग्रंथ साहब जिसको कहा जाता है वो है। और इसमें गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जितने भी इनके गुरु हुए हैं उन सब के जो है हीम्स हैं, यानी जो धार्मिक प्रार्थनाएं होती हैं, यानी जो रिलीजियस सॉन्ग भजन जो होते हैं उनको हीम कहा जाता है। सो वहां उसमें, और इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात जो ये है कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जितने भी हीम्स हैं, जितने भी इस तरह के भजन वगैरह हैं, वो विभिन्न धर्मों से लिए हुए हैं। कहीं राम का शब्द भी आपको मिल जाएगा, कहीं कबीर का, कहीं रहीम का नाम भी मिलेगा, यानी ये एक तरह से बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट है, बहुत अच्छा एस्पेक्ट है यानी सिखों के लिए, कि इन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि कोई व्यक्ति जो जैसे ईसाई है और बाइबल पढ़ता है तो वो कुरान नहीं पढ़ेगा या वो दूसरी बुक से नहीं पढ़ेगा। सिखों में ये है कि आप पुस्तक कोई भी पढ़िए, किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़िए, दैट इज परमिटेड। बाकी धर्मों में ये नहीं है कि आप कुरान को ही पढ़ेंगे, आप बाइबल को ही पढ़ेंगे, लेकिन उनका है कि नहीं। तो इसीलिए मुस्लिम सेंट्स के शब्द भी हैं उसमें, हिंदुओं के शब्द भी हैं, कबीर के भी हैं, सूरदास के भी हैं, रहीम के भी हैं, कई शब्द हैं बहुत अच्छे अच्छे, और वो भाषा भी जो है लगभग गुरुमुखी जिसको हम कहते हैं वो हिंदी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती, बल्कि यूं कहें कि हिंदी से ही निकली हुई वो भाषा है। तो सिखों की डॉक्ट्रिन क्या है, यानी इनका विश्वास क्या है, ये भी मानते हैं परमात्मा एक है, यानी जब देखो ये कहते हैं परमात्मा को भी इन्होंने ब्रह्मा कुमारी की तरह से ही, यानी एक नूर की तरह से, निराकार की तरह से माना है, जैसे ये कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपजा कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन चंगे के मंदे। तो यानी उन्होंने ये कहा है एक ही नूर से सारे इंसान पैदा हुए हैं, परमात्मा ही है जो सबको बनाने वाला है और वो स्वयं निराकार है और इसीलिए वो हरेक का पिता है। तो धर्म जो है हमारे लिए वो सत्यता है, संतुष्टि है, दया है और आध्यात्मिक अनुशासन, ये वास्तविक धर्म है, धर्म की कॉन्सेप्ट जो सिखिज्म देता है। यानी धर्म सत्य है, धर्म संतुष्टता है, धर्म दया है और धर्म आध्यात्मिक अनुशासन है, ये धर्म है। और इन्होंने स्त्रियों को बहुत महत्व दिया है। एक सिखिज्म एक ऐसा धर्म है जहां जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप स्त्री के साथ डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं करेंगे, नंबर एक। दूसरी बात, उस समय जो कुरीतियां थी कि लड़की को मार देना, उसमें बड़ा क्लियर है कि कोई भी सिख अपनी लड़की को मारेगा नहीं, जो लड़की को मारेगा वो सिख नहीं है। यानी दैट यानी सोशली आप ये कहें सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंप्रूवमेंट, सोशल एनलाइटनमेंट, तो वो सिखिज्म में बहुत है, काफी है। सो इसीलिए वो ये मानते हैं कि जो हमारी बुराइयों की जड़ है वो वही पांच विकार जो हम मानते हैं। नहीं, कोई कहता नहीं है, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि ना मारें, फर्क है ना। कोई नहीं कहता मारें, ये बात मैं मानता हूं। किसी भी धर्म ने नहीं कहा किसी से घृणा करें, फिर भी जिहाद चलता है, किसी ने नहीं कहा, इवन मुस्लिम्स भी नहीं। धर्म कुरान के अंदर भी कहीं नहीं कहा गया है कि आप नफरत करें या किसी को काफिर कहकर उसका कत्ल करें, ये कहीं नहीं। लेकिन हम हिंदुस्तान में भी जानते हैं, जब यहां मुस्लिम रूल मुगल रूल हुआ और उस समय जो है धर्म परिवर्तन के लिए चाहे कितने भी, चाहे इवन अकबर भी हुआ तो भी क्या, जजिया वगैरह तो उसने भी लगाए रखा ना, और औरंगजेब ने कितना कुछ किया, छोड़े उस बात की तरफ हम नहीं जाते। बट स्टिल, यानी सोशल एनलाइटनमेंट के लिए प्रेरणा देने का काम जो है सिखों ने किया, सिखिज्म में है, मेरा कहने का भाव ये है। सो उसमें ये किया गया, उन बताया, और उसी तरह से जो है वो पांच हमारे विकार जो हैं उनको हम दूर करें। और वो ये कहते हैं कि जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा हमेशा आकर्षित करती है, पवित्र आत्मा हमेशा सत्य बोलती है, पवित्र आत्मा हमेशा अन्याय का विरोध करती है। यानी कहने का भाव पवित्र कहें, अच्छी कह लें, जिसको भी। सो एक अच्छे सिख का कर्तव्य है कि उसका व्यवहार आकर्षक हो, यानी उसमें बुराई ना हो, उसके अंदर फ्री स्पीच हो, और वो जो है किसी के ऊपर अन्याय ना करे, और साथ में अन्याय के विरुद्ध जंग भी करे, लड़ाई भी करे, अन्याय का सामना करने का प्रयास भी करे। सो उनके सिखों के लिए कहा जाता है कि आप जो है अपना एक ही परमात्मा को, और उसको अकाल मूरत, अकाल पुरख कहते हैं उसको जो है, यानी एक उनकार कहते हैं, आपने देखा होगा एक और उसके साथ जो है आमतौर पर इनका सिंबल है। सो एक ही परमपिता परमात्मा है, वो टाइमलेस बीइंग है, जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं अनादि है। इसी तरह से वो इसमें सिखों के अंदर कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, कोई कास्ट का विश्वास नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है। जो सिख है वो सिख है, वो सारे ही सिख हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, यानी जाति के हिसाब से। ये किसी इसको मैजिक को, जादू को, चमत्कार को नहीं मानते हैं। ये जो हम जन्म पत्री होरोस्कोप वगैरह बनाते हैं वो उसको नहीं मानते हैं। यानी जैसे हम ये कहते हैं ना कि वो कौन सा दिन हम निकाल लेते हैं मुहूर्त, शुभ मुहूर्त जो है वो उनके लिए कोई शुभ मुहूर्त की बात नहीं है। हम तो जो है वो कोई भी काम करना हो, शादी ब्याह करना हो, कुछ है तो शुभ मुहूर्त पंडित जी के पास जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उनके लिए किसी भी इतवार को, जैसे क्रिश्चियंस के अंदर किसी भी इतवार को आनंद कारज किया जा, वो उस विवाह को कहते हैं आनंद कारज, किसी भी संडे को किया जा सकता है। सो इसीलिए वो कोई होरोस्कोप को, जन्म पत्री को नहीं मानते हैं। आइडोलेट्री नहीं है, आइडोलेट्री यानी किसी भी मनुष्य की पूजा, इवन गुरु नानक जी की भी पूजा नहीं की जाती है। गुरु ग्रंथ साहब को जो है अपना वो गुरु माना जाता है, सिर्फ उसको ही। इसी तरह से जो है किसी सुपरस्टिशन को, अंधविश्वास को, जैसे हम हिंदू लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं, वो नहीं मानते हैं इन चीजों को। श्राद्ध वगैरह भी नहीं है, सुपरस्टिशन भी नहीं है, और वो ये कहते हैं कि कोई और सेक्रेड पवित्र स्थान और नहीं है सिवाय जहां हमारे गुरु हैं। गुरु के यानी कहने का भाव, जहां गुरु ग्रंथ साहब पड़ा है उससे बढ़कर पवित्र स्थान नहीं है कोई भी। और आप ये देखें कि अगर आपके शहर में जहां से भी आप आए हैं, अगर वहां कहीं सिख हैं, गुरुद्वारा है, और किसी सिख फैमिली के अंदर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर जाना है, वहां पाठ है, जैसे हम रामायण गीता का पाठ करते हैं, तो ये आप देखें गुरु ग्रंथ साहब को किस तरह से उठाकर लेकर जाते हैं, सर पर लेकर जाते हैं, और अगर छोटे उस रूप में ले जा रहे हैं तो एक व्यक्ति उठा के जाएगा, नहीं तो चार लोग जो है इसको उठाकर पूरे आदर सम्मान के साथ लेकर जाते हैं। और पूरा ध्यान रखा जाता है कि जहां गुरु ग्रंथ साहब रखा गया वो जगह साफ सुथरी हो, पवित्र हो, और उसमें समय पर, ठीक समय पर प्रकाश किया जाए, ये भी नहीं जैसे हम अमृत वेला कहते हैं वो उसी समय उठकर गुरु ग्रंथ साहब जहां रखा हुआ है उस समय वहां प्रकाश होना चाहिए, रोशनी करनी ही करनी है वहां पर। तो ये उसको जो है सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। सो उन्होंने जैसे कहा कि भाई ठीक है आप कोई भी होली बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन खालसा जो बनाया गया वो इसीलिए कि डिस्टिंक्टिव रहें, समाज में सिखों की पहचान अलग से हो जाए। यही कारण है कि सिखों के नाम के साथ सिंह लगाया जाता है और स्त्री के नाम के साथ कौर लगाया जाता है। सो फर्क नहीं पड़ता आप राजेंद्र सिंह हैं या राजेंद्र कौर हैं, तो इसी में ही फर्क आता है कि आप यानी नहीं या है ना नाम है अमरजीत कौर स्त्री है, अमरजीत सिंह पुरुष है। सो ये भी है कई ऐसे भी नेचुरली स्वाभाविक हो जाता है कि जब विवाह हो तो लड़की का नाम अमरजीत हो, लड़के का नाम भी अमरजीत हो, लेकिन फर्क वही है वो सिंह है वो कौर है। सो अमरजीत सिंह का विवाह अमरजीत कौर के साथ। तो ये नाम के साथ जो है ये पहचान है, कहने और कुछ नहीं। और थोड़ा देखें जो आज के जीवन के अंदर इवन सिखों के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है डाइल्यूशन हो गया है कि इनको कहा गया है कि किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, नशे की किसी भी चीज का, शराब है, धूम्रपान है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन होने लग गया या करते हैं या कुछ ज्यादा ही करते हैं, शराब का इस्तेमाल तो ज्यादा ही। और हाँ और हालांकि इनको ये कहा गया है कि आप वेजिटेरियन जीवन जिएंगे, लेकिन जितना ज्यादा मैं जितने भी अपने सिख ब्रदर सिस्टर्स को जानता हूं, जितना ज्यादा इनके घरों में शराब और मांस का इस्तेमाल होता है मैंने और घरों में देखा नहीं है। यानी ये एक तरह के आप कह लें कि कितना जो है हम डिसिलियनमेंट में आ गए या हो गए। सो इसीलिए इनको वैसे तो चैरिटी के लिए भी बहुत कहा जाता है, एक ऑनेस्ट लिविंग होनी चाहिए आपकी, आप लड़कियों का जो है ध्यान रखें। और साथ में इनको ये भी कहा गया कि आप अपनी शिक्षा का गुरुमुखी को जरूर पढ़ें, चाहे दूसरी भाषाएं पढ़ें, हर सिख को गुरुमुखी जरूर आनी चाहिए। लेकिन कई बार देखने में यह आता है कि नॉन सिक्स को जो है गुरुमुखी या पंजाबी लिखनी पढ़नी आती है, बहुत सारे सिखों को नहीं आती है। आप में से कितने हैं जो पंजाबी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं? ओ माय गॉड, जस्ट वन, नो आई एम विद यू, जस्ट वन। मैं लिख भी सकता हूं, पढ़ भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं, आई कैन डू, या सो। तो देखिए उनको पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही, क्योंकि ये पूरा समय एक मार्शल कॉम रही, विरोध का सामना करती रही, और फिर वक्त के साथ जैसे मटेरियलिज्म भी आ गया, और ये क्योंकि एग्रेसिव कास्ट बन गई, कम्युनिटी बन गई एग्रेसिव। तभी ये नहीं, अगर आप देखें बहन जी आप बुरा नहीं माने, एक ने आपने हाथ खड़ा किया था पंजाबी के लिए, यानी कहा जाता है कि अगर आप किसी सिख के साथ बहस कर रहे हैं तो झगड़ा मत करिए, नुकसान में रहेंगे। यानी बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, मरने मारने को बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत है, अपने कॉल के पक्के हैं, जो वचन दे दिया उसके पक्के हैं, यानी जो कह दिया वो करेंगे, चाहे उसके लिए मरना ही पड़े तो भी। यानी दैट इज व्हाई दे आर एग्रेसिव आल्सो। तो अब 19वीं 20वीं शताब्दी में आकर इनका पॉलिटिकल विकास भी हुआ, जैसे अब पॉलिटिकल संस्थाएं बन गई, सिंह सभा बन गई, शिरोमणि अकाली दल बन गया, यानी वो इस तरह से इनका पॉलिटिकल विकास होना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी ये काफी पिछड़ी हुई कौम रही है। So here we come to an end. This is Sikhism. I hope I have been able to cover. चाहे वो उस ढंग से नहीं कर पाया, कहीं मुझे लगा कि मैं रेस लगा रहा हूं, कहीं लगा मैं थक कर धीरे धीरे चल रहा हूं, लेकिन फिर भी कोशिश थी, क्योंकि तीन धर्म को गुप्ता जी उठ के जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। यानी गुप्ता जी से ही पूछना था मुझे कि इन्होंने तीन धर्म हमें दे दिए एक पीरियड में पढ़ाने के लिए, बताओ। यानी अगर छह धर्म थे अगर 6 घंटे दिए होते तो अच्छा लगता ना, आपने 3 घंटे में 6 धर्म पढ़ा दिए, शुक्र है उन धर्म वालों ने इतराज नहीं किया आप पर। ओम शांति, ओम शांति।